नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के 16वें एपिसोड में। अब तक मैंने जितनी भी आपको कहानियां सुनाई हैं उसमें कोई ना कोई मर्डर की कहानी है, लेकिन आज की जो कहानी है वो प्यार की है। आज की कहानी में कोई मर्डर नहीं है। आज की कहानी एक हरियाणा के क्रिमिनल की है जिसपे 30-30 मुकदमे चल रहे थे, उसको पुलिस ढूंढ रही थी। पर वो एक दिन एक लड़की को देखता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो पूरे 150 दिन तक उस लड़की का पीछा करता है, कभी उसके सामने आने की कोशिश नहीं करता, कभी उसे तंग नहीं करता, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे लड़की को कुछ पता चले, बस वो उस लड़की को देखता, उसका पीछा करता। 150 दिन उसका पीछा करने के बाद उसे सारी जानकारी हो गई थी कि उसका घर से निकलने का क्या टाइम था, घर वापस आने का क्या टाइम था, ऑफिस कब जाती थी, कहाँ जाती थी, उसके घर में कौन कौन थे। और वो आखिर में 2 ऑटो भी खरीदता है, और ऑटो सिर्फ इसलिए खरीदता है कि किसी दिन वो उसकी ऑटो में बैठे और वो उसके करीब आ सके। उसने ये सब किया और यहाँ तक अपने दोस्तों को झूठ भी बोला, और आखिर में अपने प्यार को पाने के लिए वो उसे किडनैप कर लेता है। और ये किडनैपिंग भी बड़ी अजीब होती है। इस किडनैपिंग में कोई रैंसम नहीं, कोई लड़की को परेशानी नहीं, कुछ नहीं करता ऐसा। बस वो चाहता है कि आखिर में वो लड़की से शादी कर ले और नेपाल जाके उसके साथ सेटल हो जाए। कहानी दिल्ली की है, साल 2015, महीना जनवरी या फरवरी का था। गाजियाबाद की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 23-24 साल थी, वो स्नैपडील में काम करती थी, नाम था दीप्ति। जनवरी फरवरी 2015 के एक संडे को वो अपने एक दोस्त के साथ कनॉट प्लेस में घूम रही थी। वहाँ पर हरियाणा का एक माना हुआ क्रिमिनल जिसका नाम देवेंद्र था, वो कनॉट प्लेस पे उस वक्त मौजूद था। वो पुलिस से इधर उधर भागता रहता था, यहाँ वहाँ छुपता था, और दिल्ली उसका आना जाना लगा रहता था। और वो दीप्ति को देखता है और उसे देखते ही पहली नज़र में दीप्ति से प्यार हो जाता है। देवेंद्र की कहानी ये थी कि वो था तो एक क्रिमिनल लेकिन पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था। उसने चंगेज़ खान को पढ़ा, उसने हिटलर को पढ़ा, और शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन। लेकिन ये पता नहीं कि उसको दीप्ति को देख के ही उसे क्या हो गया था। उसे लगा कि दीप्ति ही वो है जिसकी उसे तलाश थी, और यहाँ से एक तरफा लव स्टोरी शुरू होती है। देवेंद्र की इसके पीछे सोच ये थी कि हिटलर पूरी दुनिया को कैप्चर करने निकला था, चंगेज खान ने अकेले ही कई मुल्कों पर कब्जा किया, शाहरुख खान डर को डरा सकता है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की नहीं आ सकती जिसके साथ मैं शादी करके अपनी सुकून की ज़िंदगी बिताऊं, कहीं दूर जाके उसके साथ घर गृहस्थी ना बसाऊं। तो ये उसका सपना था, और सपने को हकीकत की शक्ल मिल ली दीप्ति को देखकर। तब दीप्ति को जब पहली बार देखता है तो उसके साथ दीप्ति का एक दोस्त भी था, तो दीप्ति के दोस्त को देखकर इसको अच्छा नहीं लगा और उसने फैसला कर लिया कि दीप्ति ही उसकी अब ज़िंदगी है। अब इसके बाद वो दीप्ति का पीछा करना शुरू कर देता है, करीब 150 दिन तक दीप्ति का पीछा करता है। दीप्ति कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ऑफिस कब जाती है, ऑफिस से कब आती है, घर वालों के साथ घर से कब निकलती है, घर में कौन कौन है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो जानकारी हासिल कर लेता है। अब ये सारी चीज़ें जब उसे पता चल जाती हैं तो वो अब सोचता है कि उसको किसी भी तरह दीप्ति को हासिल करना है, और उसको हासिल करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो दीप्ति के करीब आने के लिए सबसे पहले वो 2 ऑटो खरीदता है। वो ऑटो खरीदता अपने दोस्त को झूठ बोलकर कि ये ऑटो में हम किडनैपिंग करेंगे, और जिसका किडनैपिंग करेंगे वो हवाले का बहुत बड़ा कारोबारी है, हवाला का काम करता है, तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। तो ये दोस्त से दगाबाजी कर ये ऑटो खरीदता है। तो फिर ये ऑटो में वो कभी दीप्ति के घर के बाहर पहुंच जाता था या कभी दफ्तर के बाहर, क्योंकि उसे आने जाने का टाइम पता था। पर वो 10 दिन जाता था, पर मुश्किल से दीप्ति एक ही दिन उसके ऑटो में बैठती थी, वो भी सुबह के समय। ऑफिस से वापसी के टाइम पे, शाम के टाइम पे वो उसके ऑटो में नहीं बैठती थी, क्योंकि दीप्ति ही कोशिश करती थी कि वो उसी ऑटो में बैठे जिसमें 1-2 लड़कियां पहले बैठी हों। इन 150 दिनों में देवेंद्र ने कभी भी दीप्ति से बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे इस तरीके से देखा कि दीप्ति को शक हो जाए। ये सब कई दिन चलता रहा। उसके बाद इसने सोचा कि बहुत हो गया, अब ये दीप्ति के बिना रह नहीं सकता, तो अब दीप्ति को पाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर ये एक प्लानिंग करता है कि अब दीप्ति को पाने के लिए उसे किडनैप करना ही पड़ेगा, और उसे ये भी पता था कि अगर किडनैप करता तो जोर जबरदस्ती से दीप्ति का प्यार पा नहीं सकता। तो इसने दूसरी प्लानिंग करी और सोचा कि इस तरह अगर प्लान करता है तो वो दीप्ति की नज़रों में एक हीरो बन सकता है। और इसके लिए इसने अपने दो दोस्तों को साथ में लाया। और देवेंद्र अपने दोस्तों को झूठ बोलता है, उनको सच नहीं बताता कि उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, बल्कि उनको कहता है कि इसको किडनैप करेंगे तो हमें किडनैपिंग में रैंसम में बहुत पैसा मिलेगा। इसके दोस्त तैयार हो जाते हैं और फिर फरवरी 2015 में दीप्ति को गाजियाबाद से किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद देवेंद्र दीप्ति को बेहोश करता है और उसे अपने साथ हरियाणा के एक गांव में ले जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि कुछ कुछ देर के लिए आना, अपनी शक्ल दिखाना और फिर चले जाना। और ये खुद दीप्ति के आसपास रहता है ताकि उसके दोस्त भी कुछ गलत हरकत दीप्ति के साथ ना करें। दीप्ति घबराई हुई रोती रहती है तो देवेंद्र उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इनके साथ हूँ पर मैं ये काम करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊंगा, तुम्हें छोड़ाऊंगा। ये अपने आप को दीप्ति के सामने इस तरह पेश करता है कि दीप्ति को लगने लगता है कि इन किडनैपर्स के बीच में एक अच्छा इंसान यही है। दूसरी तरफ दीप्ति घर नहीं पहुँचती तो उसके दीप्ति के घर वाले गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग की रिपोर्ट डालते हैं। पुलिस दीप्ति को ढूंढ रही होती है। 3 दिन तक इसने दीप्ति को रखा पर इन 3 दिनों में दीप्ति के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसको टाइम पे खाना दिया, उसकी देखभाल करी और ये भी ध्यान रखा कि कोई और इसके साथ बदतमीजी ना करे। फिर जब उसे लगा कि दीप्ति उसके बारे में अच्छा अच्छा सोच रही है तो उसे लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया, कि दीप्ति उसके बारे में अच्छी राय रखती है। पर लगातार उससे ये भी कहता रहा कि तुम्हारा वो जो एक दोस्त है उससे दूर रहना, क्योंकि मेरे ये जो दोस्त है वो उससे नफरत करते हैं और उसके चक्कर में तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। ये उस दोस्त के बारे में कह रहा था जिस दोस्त को इसने पहली बार कनॉट प्लेस में दीप्ति के साथ देखा था। ये बार बार दीप्ति को ये इसलिए कह रहा था क्योंकि ये 2 चीज जानना चाहता था। पहली चीज ये कि दीप्ति का उससे अभी भी कोई रिश्ता है या इससे दीप्ति का उससे कोई रिश्ता है। दूसरा ये कि उसको धमका रहा था कि अगर उससे रिश्ता रखा तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। तो 3 दिन बाद जब देवेंद्र को ये भरोसा हो गया कि दीप्ति उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचती है तो दीप्ति से कहता है कि मेरे दोनों दोस्त बाहर गए हुए हैं, ये अच्छा मौका है, चलो तुम्हें यहाँ से निकाल लेते हैं। चुपचाप दीप्ति को वहाँ से निकालता है, गाँव के रेलवे स्टेशन में जाता है और जो पहली ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही होती है उस पर दीप्ति को बिठाता है। दीप्ति को बिठाने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है वो दीप्ति से एक लाइन पूछता है कि क्या तुम एक दोस्त बनाकर जा रही हो या दुश्मन। दीप्ति जवाब देती है कि दोस्त। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और वापस आ जाता है। ट्रेन स्टेशन से निकलती है और जैसे ही निकलती है स्टेशन से दीप्ति एक साथ में जो पैसेंजर था उससे मोबाइल फ़ोन लेती है और सीधा अपने घर फ़ोन लगाती है कि इस तरह वो एक ट्रेन में है, दिल्ली आ रही है। घर वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, वो दिल्ली पहुंचती है, घर वाले उसको रिसीव करते हैं और घर ले आते हैं। वहाँ पुलिस पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, पूरी जानकारी बताओ। तो वो स्टेशन का नाम तो बता पाती है जिस स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन वो घर का पता नहीं बता पाती क्योंकि उसकी आँख में पट्टी बंधी हुई थी। हाँ, उसे देवेंद्र का हुलिया पता था। दीप्ति पुलिस को ये पूरी कहानी बताती है कि किस तरह एक किडनैपर उसकी मदद करता है उसको भगाने में। पर पुलिस को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि 3 दिन तक किसी को किडनैप किया हुआ है किडनैपर्स ने, पर रैंसम के लिए कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मारपीट नहीं की गई दीप्ति से। दीप्ति पुलिस को कुछ चीज़ें बताती हैं जिसके ज़रिए हरियाणा के उस गांव में वो जगह आइडेंटिफाई होती है। दीप्ति देवेंद्र का हुलिया डिस्क्राइब करती है, उस हुलिये से देवेंद्र आइडेंटिफाई होता है। गाजियाबाद पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद लेती है तो उनसे पता चलता है ये देवेंद्र नाम का आदमी, इस पर करीब 30-35 मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस फिर देवेंद्र की ढूंढाई शुरू करती है और आखिर में देवेंद्र पुलिस के हाथ लग जाता है। देवेंद्र फिर अपनी पूरी कहानी बताता है और पहली बार दीप्ति को तब पता चलता है कि जिसे वो एक अच्छा आदमी समझ रही थी और जिसने उसे बचाया असल में वही किडनैपर था, और ये कि देवेंद्र उससे एक तरफा प्यार करता था। पुलिस देवेंद्र को मीडिया के सामने पेश करती है और उसका बहुत ही एक दिलचस्प इंटरव्यू भी है। पुलिस के बीच में वो खड़ा हुआ है लेकिन उसके चेहरे पे कोई डर नहीं। देवेंद्र ने अपनी कहानी बताई कि वो जब 7वीं क्लास में था तब डर फिल्म रिलीज हुई और उसने वो फिल्म 10 बार देखी और उसके मन में ये ख्याल आया कि उसे भी कोई ऐसी खूबसूरत लड़की जूही चावला जैसी मिले, और दीप्ति कुछ हद तक जूही चावला को रिजेंबल करती थी। देवेंद्र ने पुलिस वालों को ये भी बोला कि अगर दीप्ति उसको मिल जाती और वो उससे शादी कर लेती تو وہ کرائم کی دنیا کو دور چھوڑ کر کبھی کرائم کی دنیا میں لوٹتا نہیں واپس اور نیپال جا کر دیپتی کے ساتھ سیٹل ہو جاتا. لیکن ایسا ہوا نہیں اور دیپتی کے سامنے بھی سچ آ گیا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ اب کیا, تو اس نے پولیس والوں کو بولا کہ دیپتی اب آزاد ہو گئی ہے, ظاہر سی بات ہے مجھے ملے گی نہیں, تو وہ جیسے بھی چاہے اپنی زندگی جی سکتی ہے. دیویند کو کڈنیپنگ کے جرم میں جیل ہو جاتی ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 2 سال پہلے وہ بیل پہ جیل سے باہر آیا. دیپتی اور اس کا پریوار کہاں ہے وہ نہیں معلوم, ڈر سے انہوں نے اپنا علاقہ بدلا. تو یہ تھی آج کی کہانی کہ بڑے سے بڑا مجرم کا بھی ایک دل ہوتا ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے. تھینک یو دوستو تلاش انڈیا کرائم پوڈکاسٹ کے 16ویں ایپیسوڈ کو سننے کے لیے. نمسکار.